लिखने वाले भी शुद्ध हैं और लीला भी शुद्ध है। वही जगत जबकि इस माइक जगत में अवतरण करती है तो इसके देखने वाले का बहुत से व्यक्ति रहते हैं और उन व्यक्तियों में भजन का तारतम्य होता है, इसलिए अपने भजन के तारतम्य से कुछ अशुद्ध युक्त, कुछ कम अशुद्ध युक्त, कोई शुद्ध, इस रूप में वो लोग देखते हैं। ये अवश्य ही होगा। इसलिए दृष्टिगत यहां पर मल जरूर रह सकता है, यहां तक कि यहां पर स्वरूप सिद्ध वाले भक्त भी होंगे तो भी भगवान की लीलाओं में कुछ माई कुछ संबंध जरूर देखेंगे। अब रूप गोस्वामी ने अपने विचार में कहा है कि भगवान की तीन प्रकार की लीलाएं हैं, द्वारका लीला, मथुरा लीला और ब्रज की लीला, गोकुल की लीला या ब्रज की लीला। इसमें ये तीनों लीलाओं में माधुर्य या ऐश्वर्य के भेद से ऐसी लीला है। गोकुल में माधुर्य है पूर्णतम रूप में या ब्रज में, मथुरा में पूर्णतर माधुर्य है, द्वारका में पूर्ण माधुर्य है। और द्वारका में पूर्णतम ऐश्वर्य है, मथुरा में पूर्णतर ऐश्वर्य है, और मथुरा में वृंदावन में पूर्ण है, एक नीचे से एक ऊपर। क्या समझा, कोई ने समझा कि नहीं? नेता बुझ ले, किसी बुझे थी? तुम तो कलम चला थी, की बुझ ले बोलो। এই তো কলা বুঝেছে, কলা একেবারে। আব পূর্ণতম কানে সে মাধুর্য পার্কিয়া তক কা জায়গা, পার্কিয়া वृंदावन का ब्रज का जो माधुर्य है, जब पूर्णतम होगा तो वहां तक जाएगा। आरंभ होगा सख्य से, दास्य से ही, और जाएगा मधुर तक। द्वारका में पति भाव है, किंतु ब्रज सुंदरी में, वृंदावन में तुम्हारा लिखित बुझबो की बुझब काल्य की लिख्य। द्वारका में पति भाव और वृंदावन में उपपति का भाव, भाव किंतु स्वरूप में अपनी बुद्धि से जगत का पारखिया भाव और स्वकीय भाव वहां पर मत ले जाना, वहां पर नहीं चलेगा जगत का, ये नहीं चलेगा। शिल रूप सनातन गोस्वामी के सिद्धांतानुसार जोग मायाकृत विभ्रम विलास विकृत हुआ है। विभ्रम विलास, जोग माया के द्वारा विभ्रम माने भ्रम हो गया, कृष्ण पति हैं किंतु यहां पर भ्रम हो गया जो वो पति हमारे वो लोग हैं, विशेष रूप से भ्रम। जोग माया ने ये भ्रम को अभिमान के रूप में पैदा कर दिया, अभिमान केवल है। तथापि तो श्रील जी गोस्वामी ने जब गोलोक और गोकुल का एकत्व प्रतिपादन किया, जबकि वो कहते हैं कि गोलोक इस उस जगत का और ये प्रकट लीला दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं, देखने में ही केवल जो कुछ है, एक यहाँ दिखती है एक वहाँ दिखती है, दोनों लीलाओं में तनिक भी भेद नहीं, किसी भी विषय से तत्वता कहो, भावगत कहो और रसगत कहो, कोई भी भेद नहीं है। इसलिए कि वहाँ पर वो लीला रस का आस्वादन नहीं कर पाते हैं गोकुल में और वृंदावन में, तो इसलिए इस जगत में शरीर धारण करके तब रसास्वादन करते हैं, ऐसी बात गलत है, ऐसा नहीं। इस जगत के जीवों पर दया करने के लिए वो अपने लीला को वहां से अवतरण कराते हैं, जिसको देख सुन करके उस समय के लोग, भविष्यत काल के लोग उससे उधर में आकर के और भजन करते करते इस महत्व चीज को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दो काम होगा, एक तो कृष्ण का उस जगत में जैसे लीला रस का स्वादन करते वो भी हो जाएगा, और जगत के जीवों का भी उपकार भी हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो बिल्व मंगल को ये भाव नहीं आता, श्रुतियों को भी ये लोभ नहीं होता, और वो साधन करके वैसा नहीं, दंडकारकन के ऋषि लोग जो हैं उनको नहीं होता, चैतन्य महाप्रभु के लीला के समय में लाखों लोग इधर में आकृष्ट हुए, ये बात नहीं होती। इसलिए ये भगवान की कृपा है कि इस लीला को अवतरण कर, इस चीज को जो कृष्ण लीला के समय में नहीं ले सके उन पर दया करने के लिए वो कृष्ण ही राधा जी का भाव लेकर के और सरलीकरण करके इस जगत में कलयुग में आकर के प्रचार लोगों को। अभी हम लोगों में से लाखों में से एक आदमी को तो जो हो रहा है, इच्छा हो रही है, सत्ययुग में ऐसा नहीं होगा, संभव नहीं था, रामचंद्र जी के समय में ऐसा संभव कर नहीं था, कोई ऐसा सोच नहीं सकता था, किंतु चीजें थी। पहले का है,
पहले
का कल्प का, उस समय का द्वारका लीला के समाप्त में कलयुग में उनको ये हुआ, महाप्रभु जी आए हैं उस समय होगा, और तब से उनकी कुछ रुचि होकर के लोभ हुआ, और लोभ होने के बाद में तब फिर साधन कर रहे थे इतने दिनों तक रामचंद्र जी की कृपा से, फिर वहां से चले गए वहां प्रकट लीला में, वहां पर जन्म लिया। इसलिए गोकुल में सभी लीलाओं का मूल तत्व है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा, वहां पर प्रक्रिया भी किसी न किसी रूप में है। जो विवाह की विधियों से कन्या का ग्रहण करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, वे पति कहलाते हैं, जो अनुराग के वशीभूत होकर के प्रक्रिया रमणी को प्राप्त करने के लिए धर्म का उल्लंघन करते हैं उनको पति कहते हैं। गोलोक में विवाह बंधन रूप धर्म ही नहीं है, उस जगत में विवाह की कोई प्रथा नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, क्यों, वहां तो एक ही कर्म परम पुरुष हैं और सब बाकी उनकी लक्ष्मियां हैं, वहां पर ये सब की प्रथा नहीं है, वहां पर जन्म और मरण नहीं है, वहां पर साधन नहीं है, इसलिए विवाह इत्यादि विधि आदि नहीं है, वो नित्य है। कहां पर कृष्ण नित्य किशोर के रूप में वो विराजमान है, इसलिए नए रूप में कृष्ण का वहां पर कोई विवाह भी संभव नहीं, ये इस लीला में ही केवल दिखता है। जब वहां पर धर्म ही नहीं है तो उल्लंघन करने की बात और प्रज्ञा की भावना कहां से आएगी, इसलिए वहां पर उपपति भाव ही नहीं है। जहां पर पति भाव होता है वहां पर उपपति होता है, जहां पर पति ही नहीं है केवल एक ही मात्र कृष्ण है, कोई प्रश्न नहीं, विवाह ही नहीं है तो फिर पति उपपति क्या, वहां पर जो है सब उनकी कृष्ण की क्रियाएं हैं, और जो गोपियां हैं उनकी माताएं हैं, और कोई है तो बहन स्थानीय है, इस रूप गोपियां माने समझ लो जैसे सभी कृष्ण की प्रियाएं हैं, ऐसा नहीं, यशोदा जी की भी तो सहेलियां हैं, वो कृतिका जी की भी सहेलियां तो है ना, इसलिए वहां उस प्रकार का पतित्व भी नहीं है, उपपतित्व भी नहीं है। क्योंकि वहां पर उन गोपियों का दूसरी जगह कोई शादी ही नहीं है, उपपति भाव कहां से, कोई शादी नहीं होती किसी के साथ, जब दूसरे के साथ में किसी की शादी नहीं है तो पतिया भाव क्या है, किंतु अभिमान योग माया के द्वारा नित्य वहां है। इसलिए स्वकिया प्रतिया इन दोनों की स्थिति वहां पर नहीं है। जीव गोस्वामी यही कहना चाहते हैं ये तत्व की दृष्टि से। अब इसका लोग इसको समझ नहीं पाते इस चीज को, इसलिए वो परस्पर तर्क वितर्क करते हैं। प्रकट लीला में प्रापंचिक इस जगत में जब लीला करती है तो विवाह बंधन रूपी एक धर्म अवश्य है इस जगत में। जब इस जगत में जसोदा जी और नंद बाबा जब आए हुए तो उनकी शादी हुई होगी कि नहीं इस जगत में, किंतु वहां वहां नहीं, वहां नित्य है। बलदेव जी की भी यहां पर शादी हुई, कृष्ण की बहनें हैं उनकी भी शादी हुई, इस तरह से वहां पर सब शादियां होती हैं, ये धर्म है। किंतु उस जगत में ये सब नहीं है, वो जन्म के पहले से ही वो सब चीजें हैं, वहां सब नित्य है। कौन सा सोमवार पहला दिन है, ये कितने पहले कितने वर्ष पहले ये सोमवार हुआ होगा, पहला जो सोमवार है ना वो आज से कितने दिन पहले हुआ होगा, कुछ ठीक नहीं। पहला सोमवार सृष्टि के आदि में, तो वो कौन सा कितना दिन पहले होगा, तो ये जो ब्रह्मा इससे लाख ब्रह्मा पहले हो गए हैं उनमें जो पहले ब्रह्मा होंगे स्वयंभू मुनि स्वयंभू कौन, तो वो कब है इसका कोई हिसाब नहीं है। उसी तरह से वहां नित्य काल है, अखंड काल नित्य काल चलता है। वहां पर जन्म कुंडली नहीं बनती, जन्म कुंडली यहां बनती है, वहां पर जन्म कुंडली नहीं है। इसलिए यह माधुर्य इत्यादि जो रूप धर्म है योग माया के द्वारा संगठित होता है, कृष्ण उस धर्म का उल्लंघन कर परकिया भाव का रसास्वादन करते हैं। यहां पर केवल अभिमान, नंद बाबा सोचते हैं कि मैं इसका पिता हूं, और कृष्ण क्या अभिमान रखते हैं, मैं नंद बाबा का बेटा हूं, किंतु ऐसा हुआ नहीं, जन्म नहीं हुआ, केवल अभिमान। वैसे राधा जी उनको उसी रूप में जानते हैं और कृष्ण उनको उस रूप में जानते हैं। योगमाया द्वारा प्रकटित यह धर्म उल्लंघन लीला प्रपंच में ही प्रपंच द्वारा आच्छादित नेत्रों से दिखता है, प्रपंच में प्रपंच द्वारा आच्छादित प्रापंचिक नेत्रों के द्वारा ही यह दिखता है। वास्तव में कृष्ण लीला में वैसा कोई लघुत्व या उत्तमत्व नहीं है, वहां एक भाव प्रक्रिया रस ही समस्त रसों का सार है। जैसे पृथ्वी में पंचभूतों के गुण उसमें होते हैं सूर्य, आकाश में शब्द होता है और वायु में शब्द और स्पर्श, फिर आग में उसमें रूप और बढ़ जाता है, रूप वायु और स्पर्श तीन है, और पानी में एक रस और मिल गया तो शब्द स्पर्श रूप पानी में रस, और पृथ्वी में और भी एक बढ़ गया गंध, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये पांच इसमें। उसी तरह से मधुर रस में पांचों मान चारों और उसमें रस सम्मिलित हैं अपने आप। और उसी का गोलोक में वृंदावन में इसका अभाव हो जाएगा, नहीं है। उस रस को आस्वादन करने के लिए इस प्रपंच में प्रकटित वृंदावन में उनको आना पड़ता है, प्रकट लीला करना पड़ता है। यह सिद्धांत कदापि स्वीकार नहीं, यह गलत है। जो वहां है नहीं और यहां हो गया, मूल ही में नहीं है, बीज में वो पोटेंसी नहीं है और वो पेड़ कैसे आ जाएगा? बीज नहीं दिया और वो पत्थर एक गाड़ दिया, उससे पेड़ हो जाएगा आम का? नहीं। इमली का पेड़ लगाया और उससे कटहल का पेड़ हो जाएगा? ये नहीं। इसलिए वहां पर उस चीज का अभाव है और इस जगत में हो गया ऐसा नहीं। जो उस जगत में है वही इस लीला में यहाँ पर अवतरण करती है, लीला प्रकटित हो, इसलिए उसको अवतार कहते हैं। इसलिए गोलोक में परम उपादेय, गोलोक में परम उपादेय रसस्वादन नहीं है, ऐसा कदापि संभव नहीं है। सब अवतारी कृष्ण उसे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आकार में गोकुल में अवश्य आस्वादन करते हैं। इसलिए परकीयारूप धर्मलंघन प्रतीति माइक जड़ नेत्रों के द्वारा प्रतीत होने पर भी किसी न किसी रूप में उसकी सत्यता गोलोक में है। अब किस रूप में है? वहां पर नित्य मुक्त जो वहां पर पहुंचे हैं वो लोग इस चीज को समझते हैं। जी गोस्वामी वहां के व्यक्ति हैं, इसलिए वहां से लिख रहे हैं। अब यहां के लोगों को समझ में नहीं आती। आत्मा रामो अपि अरिगमत, कृष्ण आत्मा राम है, आत्मा राम में भी श्रेष्ठ हैं जो आत्मा में ही रमण करते हैं। सुखदेव गोस्वामी को, सनक सनंदन सनातन ऋषि इत्यादि को आत्माराम कहा जाता, आत्माराम मुनि। उनको न कपड़े की जरूरत है, सनक सनंदन सनातन कपड़े पहनते हैं। दिग्वसन 5 वर्ष के कि कितने वर्ष के लड़के हैं, कभी कपड़े जरूरत नहीं। ठंडे में कपड़े पहनते होंगे तो
ठंडे नहीं लगते,
गर्मी में कपड़े उतार देते हैं, नहीं उनको कपड़े की जरूरत है। भूख लगती है तो नहीं, भूख भी नहीं। उनको हवा की भी जरूरत नहीं है, पानी की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं। ये सब लोग ऐसे आत्मा में रमण करने पर और कोई बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती, उसी में संतुष्ट और पूर्ण रहते हैं। उनको कोई देखने की, आंख खोलने की जरूरत नहीं होगी। ये कहां क्या, यदि खोलेंगे तो दूसरों पर कृपा करने के लिए, अपने लिए कोई जरूरत नहीं। अपने आत्मा में ही आत्मा इतनी उनकी आनंददायक है, अर्थात ब्रह्मानंद है, विशाल आनंद है, जिसमें वो कैसे रामचंद्र जी नहीं सीता जी वहां रावण के अशोक वन में बैठी है, वर्षा हो रही है, झिप 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 कर करके वर्षा की पानिया पानी और एक पेड़ के तले बैठी है, ध्यान में लगाए हुए हैं। जनकपुर का दृश्य है, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में उनका यज्ञ देखने के लिए पधार रहे, बगीचे में दोनों से भेंट, सीताजी देख रहे हैं। ओ, कैसे श्यामल और गौ किशोर, ये विशाल स्कंध देश, विशाल वस्त्रचल, भृकुटि कैसी, भीतर से जैसे कि वो लावण्य होता है ना, किसमें
मुक्ता
में, वैसे लावण्य झांक रहा है। अभी किशोरावस्था, जैसे मदमस्त हस्ती सावत चलता है, ऐसे दोनों चल रहे हैं। देख करके कोई भी आकर्षित हो सकता है। सीता जी ने मन ही मन में कहा, जी यही हमारे पति हैं। इसके बाद में धनुष यज्ञ में रामचंद्र जाते हैं, वहां पर जनक जी प्रतिज्ञा किए रहते हैं, हमारी सीता को उसी के साथ में विवाह देंगे जो धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण चला देगा। किंतु आज तक ऐसा कोई नहीं मिला। लोग जनक को गाली दे रहे हैं, स्त्रियां पुरुष, ऐसी प्रतिज्ञा इसने क्यों की? सीता जी को भीतर भीतर में कष्ट हो रहा है, न जाने क्या होगा, भविष्य अनिश्चित है नर्वस लीला के लिए, नहीं तो वो सकती है जानती है। रामचंद्र जी धनुष के तरफ में बढ़ते हैं, विश्वामित्र जी आते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं। लक्ष्मण जी ने पैर जमा करके पृथ्वी को पकड़ लिया और रामचंद्र जी ने देखते देखते ही क्षण मात्र में धनुष को उठाया, कब उठाया, कब प्रत्यंचा का रोपण किया और कब वो टूट गया बीच में तीन खंड होकर के, भीषण विकराल शब्द हुआ। लोगों ने देखा जो धनुष पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, आनंद की सीमा नहीं रही। सीता जी को बुलाया गया, सीता जी हाथ में माला ली गई, उनके अंग प्रत्यंग जड़ हो गए प्रेम के मारे, उल्लास से पैर नहीं चलते, देखना चाहती हैं, नेत्र नहीं खुलते। रामचंद्र जी स्थिर भाव से खड़े हैं। अब जनक जी बड़े आनंद उन्नीत होकर के आदेश दिया, इसको ले चलो। रामचंद्र जी के गले में परमा डाल डाले, सीता जी का हाथ ही नहीं उठता, दोनों तरफ से दो सखियों ने हाथ को उठाया। इधर रामचंद्र जी के हृदय में कैसी फूलना हो रही होगी, उद्दीपना कैसी हो रही होगी। सीता जी ने आंख बंद करते हुए ही मानो राम को अपने हृदय में बैठा ली और गले में उन्होंने हाथ उठवाया, हाथ से उन्होंने माला छोड़ दी। उसमें कैसा लग रहा है सीता जी, ये कहां हो रहा है? लंका में बैठकर। अच्छा, इसके स्मरण से सीता जी को आनंद हो रहा है ना दुख हो रहा है? किंतु जब ही बाहर की स्मृति आएगी तो दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा। ये सब जो चीजें हैं, आत्माराम सीता जी का उस समय में जो आनंद है, उस समय जब सीता जी को कोई छेड़ दे और उनको बाह्य ज्ञान आ जाएगा तो क्या होगा? चौंक उठेंगे और आंखों से आंसू भर जाएंगे। इसलिए किसी कोई संत हो, ध्यान कर रहा हो, भजन कर रहा हो, नाम कर रहा हो, उसमें जाकर के छेड़ना, बोलना, पैर छूना ये नहीं चाहिए। किंतु हमारे आदमी सब नहीं जाने, दूर से प्रणाम कर लो बिना किसी शब्द के, बस इतना है, कोई भी डिस्टर्बेंस मत करो, नहीं तो उस समय ऐसा लगता है कि उनको बाणों से कोई छेद कर दिया। अब उस समय सीताजी को कोई कहता, अरे सीताजी सीताजी, अब उनका वहां जो जनकपुरी में राम के साथ में मिलन का जो आनंद हो रहा है वो चला जाएगा ना साथ साथ। यह है आत्माराम। संत लोग क्या करते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी हो या सनत सनत कुमार, क्या करते हैं? ऐसी लीलाओं का ही एकदम एकनिष्ठ रूप से ध्वान स्मृति रूप में समाधि में इसका दर्शन करते हैं। यह है उनका आत्मारामत्व। किंतु इन लोगों के आत्मारामत्व में और रसिक भक्तों के आत्मारामत्व में बहुत अंतर है। भक्तों का आत्मारामत्व नहीं होता, उनका लीला रस स्वादन समाधि होती है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात इत्यादि स्वाभाविक सहज समाधि होती है। और इन लोगों का अपने आत्मा में जो कुछ है वही देखेंगे और आगे नहीं। अव्यक्त ब्रह्म में जो आनंद होता है उसी आनंद में, जो इस जगत के आनंद से कोटि कोटि गुणन श्रेष्ठ है, कोटि गुणी श्रेष्ठ है, जिसमें यहां पर सब प्रकार से संपन्न जो दिगृहस्थ है और उसकी सुंदर भार्या है, उसके अच्छे लड़के हैं, शरीर वज्र के समान स्वस्थ है, परम बुद्धिमान है और पृथ्वी का रजत तो उसको मिले, इसको कहते हैं जगत का। इससे कोटि गुण है इंद्र का, उस इंद्र से कोटि गुण ब्रह्मा का, प्रजापतियों का आनंद, उस प्रजापतियों से प्रकृति का आनंद उसे करोड़ गुना, और उसे ब्रह्मानंद जो जीवात्मा में जो आनंद आत्मारमण करते हैं वो कोटि गुण है। और ये खद्योत के समान है कृष्ण सेवानंद का जो वो अथाह अनंत समुद्र में एक जल के कण के समान ये आत्मारामत्व है। तो ये आत्मारामो कृष्ण को ये आत्माराम जो कह रहे हैं, इसलिए उनका आत्मारामत्व कोई नहीं समझेगा, जो भी लोग खुद रहें ये यही तक समझेंगे, इसलिए उपमा दे रहे हैं, नहीं तो नहीं समझेंगे। इसलिए भगवत भक्ति में कितना आनंद होता है, कितना भगवान में आनंद है, भगवान के सेवा का आनंद जो है, और ये आत्माराम का जो आनंद है ये खद्योत, खद्योत माने जुगनू के समान, और वो है सूर्य के आलोक के समान। भगवान ने आत्माराम होने पर भी कोई कामना नहीं होने पर भी यहां आत्मारामत्व को छोड़ करके कृष्ण ने आत्मा को छोड़ दिया, क्या किया, अपनी आत्मा को रूप बना करके गोपी के रूप में और उसके साथ निर्मल किया, ये है आत्मारामत्व। इसलिए आत्माराम हम लोगों की आत्मा है, आत्मा की आत्मा क्या है, परमात्मा, उस परमात्मा की आत्मा क्या है गर्भोदचारी, उसकी आत्मा क्या है कारणोदचारी, उसकी आत्मा महासंकर्षण, उनकी आत्मा, उनकी आत्मा बलदेव जी, और उनकी आत्मा कृष्ण, और कृष्ण की आत्मा राधा जी, ऐसे आत्मा में आत्मन अरुद्ध सौ रतः, आत्मा मैंने अपने में जगत का जितना सौरत का भाव है वो सबको आत्मनि अवरुद्ध रोध कर दिया। रोध कर दिया माने क्या, उसी के कारण से लीला होने की, जितना प्रकृति के अंदर में कामोद्दीपक चीजें हैं, जैसे सुंदर नदी का किनारा, पूर्णिमा का चांद, शीतल मंद सुगंध हवा, फूलों का विकसित होना, प्रकृति का अत्यंत श्रृंगार धारण करना, ये सब जितने उद्दीपन इत्यादि ये सब हो तो ये सब सौरत कहलाता है। ये समस्त भावों को अपने अंदर में निरुद्ध कर और ये उन्होंने आत्मा के साथ निर्मल किया। आत्मा माने अपने ही से अपने में, वो आत्मा उनकी राधिका जी है। सत्य काम कृष्ण ने, सत्य काम है, सत्य काम माने जो कामना की वो सत्य हो जाएगी। समस्त हाव भाव अपने हृदय में स्थापन पूर्वक रे में ब्रज सुंदरी भी जथा अर्धक स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे कोई बालक छोटा सा अपनी परछाई के साथ में खेलता है, यहां पर स्वविभ्रम प्रतिबिभ्रम प्रतिबिंब विभ्रम, अपने प्रतिबिंब माने परछाई, और बालक उसे कृष्ण अपने नंद भवन में खेल रहे हैं, जो सुधा मैया ने दाहिने हाथ में मक्खन दे रखा है वो पूंछ में ले रहे हैं, अब बाल स्वभाव की चंचलता से मणि स्तंभ को पकड़ करके बाएं हाथ में खाते हुए घूम पड़ोबल कर रहे,
घूम पड़ोबल
घूम रहे हैं इसको पकड़ करके, और उसको बच्चे को देखा, बच्चे को देखा मैंने अपनी परछाई को देखा, वो भी मक्खन खा रहा सांवला लड़का, कृष्ण ने आज तक ऐसा अपना सौंदर्य नहीं देखा, आज अपने सौंदर्य को परछाई में देख करके, परछाई को सत्य मान करके एक बच्चा और उससे मिताली करने के लिए चेष्टा कहिए, पहले इसको खिला दे मक्खन और तब इसे हमारा बंधुता हो जाएगा, तो मक्खन देना है तो वो भी मक्खन दे देगा, वो जैसे जैसे कृष्ण चेष्टा कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहा है, तो कृष्ण खींच गए और चिन्ह करके ऐसे उसको बंदर घुड़की दी, तो उसने बंदर घुड़की दी, यशोदा जी ने देखा अरे ये क्या कर रहा, लज्जित हो गए और उनकी गोद में झट दौड़ करके
कपड़े से ढक लिया,
समझ गए जा रहे ये तो लड़का नहीं, ये तो मेरी परछाई है। उसी प्रकार से ये गोपियां उनकी परछाई है कृष्ण की, अपनी स्वरूप शक्ति है, परछाई है कृष्ण की, आत्मा है ये सब। हमारी आत्मा स्वरूप नहीं हो सकता, उनके साथ में हृदय में जफा आरभक जैसे छोटा सा बच्चा अपने परछाई के साथ में खेलता है। श्रीमद् भागवत में इस वर्णन के पश्चात ऐसा ही उन्होंने वर्णन किया, जैसे नन्हा शिशु निर्विकार होकर अपनी परछाई के साथ में खेलता है, वैसे रमा रमण भगवान श्री कृष्ण बंजरियों के साथ बड़े सुंदरियों के साथ में विहार किया, इत्यादि शास्त्रीय वचनों के द्वारा प्रतीत होता है कि आत्मरामता ही कृष्ण का अपना स्वरूप धर्म है, आत्मा निर्मण करना ही। और वो आत्मा जब दो रूपों में है, एक मूर्त एक अमूर्त, जब अपने स्वरूप में रहता है तो अमूर्त, और जब वही स्वरूप से बाहर में अपना रूप धारण करता है तो इसको कहते हैं मूर्त। मूर्त रूप में लीला विलास होती है, अमूर्त रूप में लीला विलास आत्मारामत्व है। श्री कृष्ण ऐश्वर्यपूर्ण जगत में अपनी आत्मशक्ति को प्रकट करके स्वकीय भाव से रमण करते हैं, वहां लक्ष्मी को अपनी आत्मा के रूप में लक्ष्मी जी को प्रकट करके, द्वारका में रुक्मिणी सप्तभामा इत्यादि 16,000 सहस्त्र ऋषियों को, 108 पत्नियों को अपनी आत्मा को उसके रूप में प्रकट करके, अपनी परछाई जैसे लड़का खेलता है वैसे उनसे यहाँ पर स्वकीय बुद्धि प्रबल रहने के कारण दास रस तक ही सीमागति होती है। वहां पर रुक्मिणी सप्तभामा सीता जी लक्ष्मी जी यह सब दासियां हैं, दासी से ऊपर नहीं पढ़ सकेगी। यदि डांट देंगी, डांट देंगे कृष्ण या राम या ये नारायण, तो लक्ष्मी जी और सीता जी सप्तभामा रुक्मिणी सब थर्रा जाएंगे, डर जाएंगे। और वहां पर वो मुस्कुरा देंगी बस, गोपियों के यहां केवल मुस्कुरा देंगी बस, उनका सब कुछ खत्म हो गया। बल्कि ललिता जी को आदेश देंगी कि इस काले को यहां से बाहर कर दो। इसलिए गोलोक में करोड़ों करोड़ों गोपियों के रूप में प्रकट होकर स्वकीय भाव को भूल करके उनके साथ में नित्य रमण करते हैं। क्यों करते हैं? आत्मा रामायण की कोई इच्छा ही नहीं है तो क्यों? चिन्मय तत्व की यही स्थिति है, उसमें सब समय क्रियाशीलता रहती है, ये कुछ बोलेगा नहीं चुपचाप, ये भी नहीं बोलेगा, इसको ऐसा रख दो तो ये जब तक स्थिति है ऐसा ही पड़ा रहेगा, जब तक कोई नहीं उठाए। और चेतन चित्त होगी, आज ही जन्म हुआ ना, आज ही किसी बच्चे का, गाय का या बछड़ा हुआ, हिरण का बछड़ा अभी जन्म लिया, वो क्या करेगा? जब खड़ा होना उठने लगेगा, गिरेगा उठेगा, उठेगा गिरेगा, थोड़ी देर के बाद में उठ करके इधर उधर देखा, इधर जाएगा उधर जाएगा, मैया के स्तन में बिना पूछे ही ये क्रियाशीलता रहेगी।
वैकुंठ जी आत्माराम,
वैकुंठ आत्माराम और लक्ष्मी जी हैं,
उन्होंने क्रियाशील की,
क्रियाशील नहीं बोले, सब क्रिया ही तो रही थी, स्वकीय भाव में उनकी दास्य भाव से क्रिया है, मान चेतन रहने से क्रियात्मक होगा, क्रिया जरूर करेगी। पहाड़ भी चेतन माना जाता है तो पहाड़ बढ़ता है, उसमें प्राण चेतनता जरूर रहेगी।
अच्छा,
स्वकीयाभिमान में रस की अत्यंत दुर्लभता नहीं होती, स्वकीय में वो चीज सहज प्राप्त होती है वो सेवा, इसलिए दुर्लभता नहीं है। अभी हमारे यहाँ पर मथुरा में सबसे सस्ती चीज क्या हो सकती है? सबसे सस्ता पानी है, हवा है ना, किंतु शुद्ध हवा पानी नहीं है,
पानी दुर्लभ
कहाँ है? दुर्लभ होगा कब? जबकि पानी यहाँ मथुरा में न मिले और पानी के बुंद के लिए तड़पे उस समय इसका मूल्य होगा। उस समय में समस्त राज्य दे करके भी, अपनी सारी संपत्ति दे करके भी एक बुंद पानी के लिए आदमी चेष्टा करें, किंतु वो सहज रूप में भगवान की कृपा से सुलभ है, इसलिए ये दुर्लभ नहीं बन रहा है। अभी सोना बहुत ही मूल्यवान चीज है, एक ग्लास पानी का जितना मूल्य है और एक ग्लास सोना उसमें भर करते दो, एक ग्लास सोना में कितना पानी मिल जाएगा, क्योंकि दुर्लभ है। और यदि पानी कहीं नहीं मिले उस समय में लाखों टन सोना एक बूंद पानी के लिए भी नहीं काफी होगा। इसलिए कहते हैं दुर्लभता में ही किसी चीज की का मूल्य होता है। इसीलिए अनादि काल से गोपियों में स्वाभाविक रूप से दुर्लभता के लिए परुढ़ा का भाव प्रबल रहता है। और कृष्ण उस अभिमान के अनुरूप अपने अंदर वैसा ही अभिमान अंगीकार करके बंसी रूप प्रिय सखी के द्वारा सहायता लेकर के रास आदि लीलाओं को संपन्न करते हैं। गोलोक नित्य सिद्ध और माइक प्रत्यय से सर्वथा अतीत एक रस पीठ है। गोलोक क्या है? नित्य सिद्ध। जो नित्य सिद्ध होगा उसको वो समझेगा, इस जगत में नहीं समझेगा, उस जगत पर जाने पर देखेगा, अनुभव करेगा, जो वो एक रस पीठ है। इसलिए वहां अभिमान से ही रस प्रवाह सिद्ध होता है। रस प्रवाह माने रस की धारा। रस की धारा माने ये हो गया, नहीं सारस सखी लीला, ये प्रवाह वात्सल्य रस भी बैकुंठ में नहीं है। ऐश्वर्य की ऐसी गति बैकुंठ में वात्सल्य रस नहीं है। माने क्या? वहां क्या बैकुंठ में नारायण का कोई माता पिता नहीं है। अच्छा, नारायण का कोई सखा है कि नहीं? कोई सखा नहीं। क्या है वहां पर? सेवक है जो हाथ जोड़ करके टिंकर होकर के सब समय सुखी करते हैं। लक्ष्मी जी भी क्या करेंगी? पैर पर लौटेंगी दासी होकर के, बस वहां पर दास भाव और एक शांत भाव। उसके नीचे जहां मुक्ति के पांच प्रकार के मुक्तियां हैं वहां पर कुछ शांत भाव और दास भाव बैकुंठ में है। और जितने भी लक्ष्मी जी भी हैं उनका भी वैकुंठ पति के प्रति दास्य भाव, स्वकीय भाव नहीं। और रामचंद्र जी के पास में शांत है, दास्य है और सख्य या वात्सल्य का आधार अढ़ाई रस वहां पर माना जाता है। बस इतना है। तो ऐश्वर्य की ऐसी ही गति है, उसमें वात्सल्य नहीं रहेगा। परंतु परम माधुर्य गोलोक में अर्थात ब्रज में रस के मूल अभिमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वहां पर नंद यशोदा सब समय नित्य समझते हैं कि कृष्ण हमारा लाडला बेटा है। रुक्मिणी जी क्या समझती हैं? वैसे ही समझती, बलदेव जी को अपना पुत्र और इनको भी अपना पुत्र ही समझती। कृष्ण एक रोहिणी, किसी को बड़ी मैया किसी को मैया कहते हैं, अपनी मैया को मैया और रोहिणी जी को बड़ी मैया कहते हैं। और उनका भी इनके प्रति अभिमान, समस्त ब्रजवासियों का भी अपने अपने अभिमान के रूप से ऐसा कृष्ण के प्रति भावनाएं हैं। वहां नंद यशोदा प्रत्यक्ष है किंतु जन्म व्यापार वहां नहीं है ना, जन्म नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? नित्य है और वो अभिमान केवल आज। यदि किसी की शादी हो तो एक दो वर्ष के बाद में बच्चा पैदा हुआ, बच्चा मान लिया कि 25 वर्ष का हो गया, तो उसको प्रति पुत्र अभिमान के लिए फिर उसको पैदा होना पड़ेगा। अरे 25 वर्ष से तो उसका पुत्र है ही है, नए रूप में पुत्र होने की जरूरत, एक बार पुत्र होता है पहली बार, तो उसके प्रति पुत्र अभिमान। वैसे यशोदा जी का कब पुत्र हुआ?
लिए।
वो समझते कि बहुत दिन हो गए हमको बेटा हुआ, कितना दिन हो गया, एक वर्ष हो गया है, इतने दिन हो गया है, दस वर्ष हो गया है, ऐसे वो समझती है। उनका भी मान नित्य ही हमारे पुत्र हैं। सखा लोगों के कब से सखा है?
नित्य ही
वो प्रारंभ से ही सखा है, आज भी वैसे ही सखा, उम्र भी वैसे ही है। यहाँ पर जन्म के साथ में आयु निर्धारित होती है, ये कितना हुआ, बड़ा है या छोटा है, इनसे वो बड़े हैं आयु से ये होगा जन्म से। और वहां पर क्या होता है, वो नित्य ही बड़े हैं, नित्य ही वो छोटे हैं। बलदेव जी कृष्ण से बड़े हैं नित्य, सुदामा जी बराबर हैं सुदामा जी, कोई भद्र
सेन मंडली भद्र
ये सब बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई बराबर हैं, ये नित्य ही है उनका अभिमान। अभिमान के अनुसार में आयु वहां पर निर्धारित होती है। जन्म के अभाव में नंद यशोदा का जो पितृ मातृत्व इत्यादि अभिमान है वस्तुतः नहीं है, परंतु अभिमान है। बहुत पुत्र नहीं होने पर भी नित्य अभिमान है। जयत जन निवासो देव की जन्मवाद, इसी में बतलाया गया है। यथार्थ में वो करें हे जन निवास कृष्णचंद्र जी आपकी जय हो। जन निवास हो, आप तो जन जन के हृदय में निवास करने वाले हैं, आप किसी के पुत्र नहीं हैं। तब देवकी के, अरे वो तो बाद मात्र है, यशोदा का ये बाद मात्र, आप किसी के पुत्र नहीं हैं, ऐसा अर्थ कौन करेंगे? जो साधारण व्यक्ति, साधारण भक्त, विशेष ऐश्वर्य वाले। आप विशेष भक्त कहेंगे, आप जो देवकी के पुत्र ये बाद है, असल में आप यशोदा के पुत्र हैं। ये सब रस सिद्धि के लिए अभिमान नित्य है। इसी प्रकार श्रृंगार रस में भी परोड़ा उत्पत्ति का अभिमान मात्र नित्य होने से कोई दोष की बात नहीं होती, अथवा शास्त्र के विरुद्ध नहीं है। वहां पर इस रूप में अभिमान है, इसलिए वहां पर विवाहनीय तथा पति इत्यादि की बात नहीं रही। इसलिए जीव गोस्वामी इसी को तत्व से विचार से सिद्ध कर रहे हैं, और उसी को हमारे रसाचार्य विश्वनाथ चौरसी ठाकुर जी रस के विचार से सिद्ध कर रहे हैं। एक अभिमान से सिद्ध कर रहे हैं, एक कहते हैं कि जन्म नहीं है वहां, वहां पर पार्थिव भाव नहीं, और ये क्या कहते हैं
अभिमान
नहीं, वहां पर परकिया भाव है। एक कहते हैं विवाह नहीं हुआ, और एक कहते हैं ये परकिया भाव है। एक तत्व से उन्होंने कहा, नहीं समझा, एक नेगेटिव रूप में कहा सच बोलो, और एक कहते हैं झूठ मत बोलो। ये दो बात हुई कि एक बात,
एक ही बात
हुई, झूठ मत बोलो और सच बोलो, एक ही बात, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। वो कहते हैं कि वहां पर विवाह इत्यादि के कारण परकीय भाव नहीं है, स्वकीय भाव ही वहां है, और ये कहते हैं, वो कहते हैं कि वहां पर परकीय भाव से रसास्वाद निकलता है। एक ही बात को वो नहीं है, और ये कहते हैं ये है, क्या चीज है को है कहते हैं, और वो कहते हैं ये एक ही बात। ब्रज में जब गोलोक तत्व तो प्रकटित होते हैं, ब्रज माने इस जागतिक ब्रज, कितना बजा, जब गोलोक तत्व तो प्रकट होते हैं ब्रज में, इस ब्रज में माने बहुत ये भूतल वाले ब्रज में, भौम वृंदावन में, उसमें प्रापंचिक जगत में परमपच्यमय दृष्टि से उक्त दोनों अभिमान कुछ स्थूल रूप में दिखाई पड़ते हैं। केवल अभिमान भेद यही है, केवल मात्र भेद यही है, प्रपंच की दृष्टि से इसमें लोग जो रहते हैं वो देखते हैं, वहां वाले ठीक देखेंगे, कहां वाले
अप्रकट,
और यहां वाले अपने अपने अधिकार के तारतम्य से, साधन के तारतम्य से उसको शुरू किया। वात्सल्य रस में नंद जो सौदा का पतित्व और मातृत्व अभिमान कुछ स्थूल आकार में यहाँ दिखता है, क्या कृष्ण उनके गर्भ से पैदा होते हैं और नंद बाबा जी दान करते हैं कि हमको पुत्र हुआ, बधाई के गीत बजने हैं और सब ब्राह्मणों का आदर करते हैं, गायें दान करते हैं, रुपए पैसे धन संपत्ति सब दान करते हैं, ये स्थूल रूप हो जाए। और वहां पर नित्य काल प्रति वर्ष नए नए रूप में उत्सव करते हैं, हमारा इसी दिन को लाला उत्पन्न होगा, बस इसी यही भेद। जैसे जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोग उत्सव करते हैं ना, वैसे नंद बाबा प्रति वर्ष उत्सव करते हैं, कब से कर रहे हैं अनादिकाल। और यहाँ पर उत्सव कब किया, जब कृष्ण पैदा हुए ना तब किया खूब विशेष रूप में, और इसके बाद में प्रति वर्ष करते हैं। इसलिए श्रृंगार रस में भी वो अभिमान जो है पति उपपति वाला उपपति वाला वैसे वहां पर नित्य है, यहाँ पर विवाह इत्यादि के रूप में प्रकटित होता है स्थूल रूप में गोवर्धन और अभिमन्यु इत्यादि के साथ, और वहां पर केवल अभिमान है और कुछ नहीं, वही अभिमान यहाँ पर गोवर्धन और सब दूसरे गोप उत्पन्न हो जाते हैं के रूप में, और वो सब प्रत्यक्षवत वो सब प्रकट रूप में दिखलाई पड़ता है। इसको कहने पर भी समझ में नहीं आएगा, केवल ऐसे भी सुन लो, साधन भजन करते 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 इस चीज को हम लोग धीरे धीरे। इसलिए वास्तव में वस्तु पर गोपियों का पृथक सत्तागत पतित्व न तो गोलोक में है न गोकुल में, यहाँ पर भी नहीं है वहां पर भी नहीं है, यहाँ दिखता है वहां पर नहीं दिखता है, अभिमान मात्र है, वस्तुतः नहीं है कहीं।